بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. ظہور انکل نے اور جو ہے وہ سراج بھائی نے بہت ہی کمپلیکیٹڈ سچویشن میں جو ہے وہ ڈال دیا ہے, کیونکہ میں جو لوگ مجھے جانتے ہیں وہ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ میں عادی نہیں ہوں یہاں پر سامنے آنے آ کر بات کرنے کا. لیکن خیر, شروع کرنے سے پہلے سب سے پہلے تو خدا کا لاکھ لاکھ شکر کہ اس نے اس لائق سمجھا اور اس قابل سمجھا اور یہ توفیق دی کہ اس مشن میں جو ہے وہ جانے کا موقع ملا. اور دوسری چیز یہ کہ دوبارہ سے خدا کا لاکھ شکر کہ اس نے جو ہے وہ ماں باپ عطا کیے جو اس مقصد کو سمجھتے ہیں. اور جب جانے کا موقع آیا اور جب پرمیشن لینے کی باری آئی تو مجھے ذرا بھی جو ہے وہ کسی بھی آبسٹیکل یا کسی بھی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور بہت ہی آسانی سے جو ہے مجھے وہ پرمیشن دی گئی. اور آخر میں یہ کہ اور یہ تیسری چیز جو ہے وہ بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے, وہ یہ کہ خدا کا لاکھ شکر کہ اس نے ان علماء کے ساتھ جو ٹائم اسپینڈ کرنے کا موقع عطا کیا, جن کے ساتھ بیٹھ کر وہ باتیں سیکھنے کا موقع ملا اور وہ باتیں سمجھنے کا موقع ملا, جس کی وجہ سے یہ جذبہ انیشلی جو ہے وہ اندر آیا میرے اور جو ہے وہ فائنلی جو ہے یہ قدم اٹھایا میں نے. جس کے اور خصوصی طور پہ دو تین نام جو میں خاص جو ہے صرف مینشن کرنا چاہوں گا اس کے اندر سے, مولانا باقری, مولانا رضوی آغا حسن مصطفیٰ رضوی, اور ایک بہت ہی جو امپورٹنٹ نام ہے وہ آغا جواد نقوی کا ہے. حالانکہ میرے ان سے ون آن ون کوئی ایسی کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے, لیکن ان کی مجالس اس کو فالو کر کے اور ان ایک آدھ دفعہ ملاقات کرنے کا موقع بھی ملا ہے, لیکن اس سے جو ہے وہ ڈیفینیٹلی بہت زیادہ جو ہیلپ ہے. تو پورے تقریباً میرا اپنا ٹرپ تقریباً 12 دن کا رہا اور اس کے اندر کافی جو ہے وہ ایونٹس ہوئے اور کافی چیزیں ہوئیں اور مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ پروسیس کیا تھا وہاں تک پہنچنے کا, یعنی کس پروسیس سے آپ گزرے, کس لوگوں سے کانٹیکٹ کیا, کیا تھا کہ وہاں تک آپ کیسے پہنچے. کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں کہ کھانے کا وہاں کیا ارینجمنٹ تھا, حلال کھانے کا وہاں کیا ہوا. کچھ کا یہ ہے کہ لوگ وہاں کیسے تھے, ڈر تو نہیں لگا آپ کو. اور کچھ ڈفرینٹ قسم کے جو ہے سوالات کرتے ہیں, وہ یہ کہ کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا وہاں جانے کے لیے, یا پھر وہاں جا کر آپ نے کیا سیکھا. تو مختلف لوگ جو ہے وہ مختلف قسم کی چیزوں میں انٹرسٹڈ ہیں. تو بہت ہی میں جو ہے بریفلی نماز سے پہلے جو ہے بریفلی جو ہے وہ تھوڑی چیزوں کو ہائی لائٹ کروں گا, اس کے بعد ان شاء اللہ جو ہے ختم کریں گے. اس مشن کے تین مقاصد تھے, اور جس کے اندر پہلا مقصد یہ تھا کہ اس وقت کیونکہ غازہ میں سیج ہے تو پہلا مقصد یہ تھا کہ کمپلیٹلی سیج کو جو ہے وہ اپلفٹ کیا جائے اس ایفرٹ کے ذریعے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ اگر سیج کو اپلفٹ نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ جو ایڈ ہمارے پاس ہے وہ ہم غازہ تک پہنچیں اور ان کو وہاں پہنچائیں. اور یہ تیسرا چیز جو ہے وہ سب سے بڑا مقصد تھا, وہ یہ تھا کہ میڈیا کوریج اور میڈیا اویئرنیس. ماسز کے اندر اس چیز کی اویئرنیس اس لیول پر نہیں ہے اور نہیں یا نہیں تھی جس پر شاید ابھی ہے. نیوز چینلز پہ شاید وہ کوریج نہیں ملی جو آن لائن میڈیا میں کوریج ملی ہے. مجھے نہیں پتا کہ نیوز چینل پر کس لیول پر کوریج ملی ہے, لیکن جتنا ہم وہاں سے فالو کر سک رہے تھے آلموسٹ زیرو کوریج تھی نیوز چینلز پر. صرف سی بی سی کے رپورٹرز ہمارے ساتھ وہاں تھے کینیڈین نیوز چینل سے, جنہوں نے تھوڑی بہت کوریج دی ہے, لیکن آن لائن میڈیا کے اندر بہت الحمدللہ زیادہ کوریج رہی ہے. ٹوٹل ہمارے ساتھ جو ہے تقریباً 40 ڈیلیگیٹس تھے, جس کے اندر سے 23 کینیڈین سے اور 2 آسٹریلیا سے تھے, 4 ڈینمارک سے, 4 بیلجیم سے اور 2 ٹرکی سے تھے اور 2 اسرائیل سے تھے. اسرائیل سے اچھا, اس 40 کے اندر جو ہے وہ سارے رپورٹرز بھی شامل ہیں. رپورٹرز ہمارے ساتھ پریس ٹی وی کے رپورٹر تھے, سی این این ٹرکی, سی بی سی, رشین نیوز سے ایک رپورٹر تھیں اور اسرائیل کے نیوز پیپر ہارٹ سے جو ہے ایک رپورٹر ہمارے ساتھ تھے. وہاں پر پہنچ کر اکثر جو ہے وہ ہمارا ٹائم ٹریننگ کے اندر گزرا تھا, اور ٹریننگ اس حوالے سے تھی کہ اگر ہمارا سامنا اسرائیلی فورسز کے ساتھ ہوا تو وہ ہمارے ساتھ کیا کیا کر سکتے ہیں. تو کچھ چیزیں جو ہمارے ذہن میں تھیں وہ یہ تھیں کہ جو ہے وہ ٹیزر یوز کریں گے, وہ اسموک بامز یوز ہوئیں گے, اٹیک ڈاگز یوز ہوئیں گے اور بیس ریگولر یعنی مارا ماری یا جو ہے وہ ہوگی فزیکل ابیوز, اور اسٹیل کی بلٹس, ربر کورڈ اسٹیل بلٹس, इसके हवाले से था, तो अक्सर टाइम हमारा इन चीज़ों की ट्रेनिंग में गुजरा था। अब क्योंकि हमारे पास फिजिकल वेपन्स तो नहीं थे, लेकिन जो एक ट्रेनिंग जिसमें सबसे ज़्यादा टाइम गुजरा था वो फिज़िकल अब्यूज़ था, और उसकी इंतहा इस हद तक थी कि हमारे विद इन ग्रुप के अंदर इस हद तक जो है वो हम ट्रेन कर रहे थे कि कुछ लोग जो है वो ज़ख्मी हो गए, यानी ब्लीडिंग करने लगे, इस लेवल तक जो है वो ट्रेनिंग हुई थी। और उसका सबसे बड़ा उसकी जो वजह थी वो ये थी कि ताकि हम अपनी आँखों से उस खौफ को देख सकें या एटलीस्ट थोड़ा सा उसका एहसास कर सकें जब हम एक्चुअल प्रैक्टिकली इस चीज़ का सामना करें। तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारा इस ट्रेनिंग के अंदर गुजरा। अब कुछ लोगों ने ये भी पूछा कि किस किस्म के लोग थे वहाँ पर, यानी जिन लोगों के साथ आप वहाँ थे वो किस किस्म के लोग थे। एवरेज अगर मैं सिर्फ आप लोगों को आइडिया देने के लिए एवरेज अगर एज ग्रुप वहाँ पर निकालूँ, तो अगर एज का एवरेज निकाला जाए तो तकरीबन ऑन एवरेज वहाँ पर जो लोग थे एवरेज एज जो है वो तकरीबन 50 ईयर्स की थी। तो हमारे पास ओल्डेस्ट में अंकल थे जो लिखा में बेल्जियम से थे, तकरीबन 81 ईयर्स के, और यंगस्ट में हमारे पास जो है वो ऑस्ट्रेलिया से एक लड़का था 23 का, और फिर 24 से जो है डेनमार्क से दूसरे कुछ जो है वो खवातीन। तो ये एज डेमोग्राफिक हमारे पास ये था, मेजॉरिटी जो है वो सीनियर सिटीजन थे। और एक जो बहुत ही अच्छा, कुछ लोग ये भी जो है स्पेसिफिक उन्होंने सवाल किया कि मुसलमानों का क्या पार्टिसिपेशन था और कितने मुसलमान थे टोटल। हम लोग 6 मुसलमान थे, जिसमें से 2 टर्की से थे, 3 कैनेडा से थे, जिसमें से 1 मॉन्ट्रियल और 1 लंदन ओंटेरियो, 1 मैं था, और 1 जो है वो प्रेस टीवी का रिपोर्टर जो लंदन से आया था, लंदन यूके से। तो टोटल 6 मुसलमान थे उसके अंदर से। अब ये जो डिवीज़न है ये भी मैं जानबूझकर कर रहा हूँ, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो आखिर में इसके ऊपर मैं जो है वो कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर दूँ। शिया में 1 ही था और बाकी सारे जो है वो हमारे अहले सुन्नत बरादर थे। लोग वहाँ पर ओवरऑल लोग कैसे थे, जिस किसी से भी वहाँ पर बात करने का मौका मिला वो सिर्फ और सिर्फ एक वजह से आया था, और वो ये था कि गाज़ा में जुल्म हो रहा है और इस जुल्म के खिलाफ हमें आवाज़ उठानी है। ये जो इनजस्टिस हो रहा है, जो ऑपरेशन हो रहा है, उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठाना ज़रूरी है। हर किस्म के वहाँ पर लोग थे। अगर हम अपनी शरीयत की जो हमारी जो बिल्कुल शरीयत की निगाह से देखें, तो हर वो काम जो हमारे शरीयत ने मना किया है वो काम वो करते हैं, यानी शराबें वो लोग पीते हैं, हर हराम काम जो हमें नहीं जो शरीयत कहती है हराम है वो सारे काम वो करते हैं। और ये जो पॉइंट था ये मेरे पर्सनली बहुत ज़्यादा यानी गौर व फिक्र का था, कि और वहाँ पर सोचने का बहुत टाइम था। तो ऐसी क्या चीज़ थी जो यानी जो हमारे पास नहीं है लेकिन उनके पास है, यानी मैं यानी इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पार्टिसिपेशन कम था, एक्चुअली पार्टिसिपेशन जो शिया कौम की तरफ से था वो डेफिनेटली बहुत कम था कंपेरेटिवली। यानी यहाँ पर भी मुझे बहुत ज़्यादा यानी अफसोस भी है इस चीज़ का, और वो ये कि बहुत ही कम लोगों को पता था कि ऐसी कोई चीज़ चल रही, स्पेशली विद इन शिया कम्युनिटी। लोकल टोरंटो की या GTA की जो शिया कम्युनिटी है, जो नॉर्थ अमेरिका में वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव कम्युनिटी है, उसके अंदर भी बहुत कम लोगों को पता था कि इस किस्म का कोई मिशन जा रहा है, इस किस्म का कोई एड शिप जा रही है, जो वाकई यानी बहुत ज़्यादा अफसोस की बात थी। अब हम हमेशा ये बात सुनते हैं कि हमारी फितरत के अंदर खुदा ने ये चीज़ रखी है कि जब जहाँ भी जुल्म होगा, जहाँ भी इनजस्टिस होगा, उसके खिलाफ हम ऑटोमेटिक आवाज़ उठाएंगे, और उसी की बुनियाद पर ये सारे लोग वहाँ पर आए हुए थे। और जो पॉइंट मैं सोच रहा था वो ये था कि मैं भी यहाँ पर आया हूँ और ये लोग भी यहाँ पर आए हैं, तो मुझ में और इनमें क्या फ़र्क है, मेरे पास ऐसी क्या चीज़ है जो इनके पास नहीं है, क्या चीज़ जो है मेरे अपने लिए इस मिशन को बेहतर कर सकती है। और वो बात सारी घूम फिर कर जो है वो एंड होती है करबला के ऊपर। एक चीज़ जो, और इसी वजह से मैंने बीच शुरू में जो है वो स्पेसिफिकली शिया और सुन्नी के हवाले से कहा था, वो ये कि जो जज्बात, जो इमोशंस, जितना टाइम और जितनी एफर्ट सब कॉन्टिनेंट के या इंडिया पाकिस्तान के शिया करबला को देते हैं, और कोई भी कौम नहीं देती है, अरब कौम भी नहीं देती, ईरानी कौम भी नहीं देती, उतना एफर्ट और उतनी टाइम और वो जज्बात किसी भी कौम के पास नहीं है, लेकिन उसके बावजूद क्यों हमारी कौम की पार्टिसिपेशन सबसे ज़्यादा कम है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि सारी सिर्फ हम में बुराइयाँ ही हैं, लेकिन हम में अच्छाइयाँ भी बहुत हैं, लेकिन कुछ बुराइयाँ ऐसी हैं जो बहुत ही यानी वाज़े हो जाती हैं। करबला की सारी हिस्ट्री और करबला की सारी आइडियोलॉजी और पूरे वाक़े को हम इतना दोहराते हैं, तो एटलीस्ट कंपेरेटिवली हमें शायद एक कदम अगर उनसे आगे नहीं तो एटलीस्ट उनके साथ साथ तो होना चाहिए जो जो नहीं है. और ये ऐसा नहीं है कि हमें ये बातें नहीं पता. उलमा ने ये बातें बहुत दफ़ा मेंबर से बयान की हैं और हमने बहुत दफ़ा ये चीज़ें सुनी हैं. लेकिन एक था कि पहले तो सिर्फ पता था, लेकिन अब यकीन हो गया इस बात के ऊपर कि जो है तीन चीज़ें, या तो हम करवाला को हम फॉलो ही नहीं करते, यानी हम हमारा आज़ादारी से कुछ लेना देना नहीं है, या इमाम हुसैन के मैसेज से कुछ लेना देना नहीं है. जैसा और ऐसा नहीं है, यानी एटलीस्ट हमारा किसी ना किसी लेवल पर सबका कुछ ना कुछ लेना देना है इस मैसेज के साथ. तो ये तो पॉइंट नहीं है. दूसरी चीज़ ये है कि हम फॉलो तो कर रहे हैं, लेकिन हम फॉलो वैसे कर रहे हैं जैसे हमारी अपनी समझ में आए. और तीसरी चीज़ ये है कि हमें अभी तक इमाम हुसैन के करबला जाने का मकसद और पर्पज़ ही समझ में नहीं आया है कि वो क्यों गए थे वहाँ पर. जब भी, और अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी दफ़ा मुझे जो है वो इस चीज़ के ऊपर बात करने का मौका मिला है, यानी जाहिर सी बात है इस लेवल पर तो नहीं, लेकिन विद इन यूथ काफ़ी जो है इस चीज़ पर बात करने का मौका मिला है. और एक बात जो बहुत ज़्यादा अफसोस की है वो ये है कि हम वाकई करबला के इमाम हुसैन करबला जाने के मैसेज को अभी तक नहीं समझें, जिसकी वजह से हमारी पार्टिसिपेशन या हमारी जो हमारी ग्रोथ है वो बहुत ही स्लो है और बहुत ही पीछे हैं हम अभी. हमारे अंदर अपनी अच्छाइयाँ हैं और हमारे अच्छा, और इसके अंदर जो और भी ज़्यादा जो अफसोस की बात है वो ये है कि हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, ख़ास तौर पर इंडिया पाकिस्तान के या सब कॉन्टिनेंट के शिया कौम के अंदर जो पोटेंशियल है वो शायद ही और किसी शिया कौम के अंदर हो, लेकिन उसके बावजूद जिन्हें हम सबको हमारी हालत पता है कैसा क्या है. तो ये एक पॉइंट मेरे अपने लिए पर्सनली बहुत ज़्यादा गौर फिक्र का था और वहाँ पर इसके ऊपर बहुत ज़्यादा जो है सोचने का मौका मिला. और इसकी बहुत ही छोटी सी एग्जांपल ये है कि हमने सालों से जो है इमाम अली के जो है कुछ अहदीस या कुछ सेंग या करबला के हवाले से कुछ चीज़ें मेम्बरों पर सुनी है, लेकिन उसका असर हम पे नहीं होता. हमारे वहाँ पर हमारे साथ जो है एक डेलीगेट ब्रिटिश कोलम्बिया से जो है 67 साल की एक जो है खातून हमारे साथ थी. रैंडमली कभी कभार मैं फ़ोन पर जो है ऐसे ही नजर बलागा से इमाम अली की जो है कोई रैंडम कोई सेइंग निकाल के वैसे ही पढ़ रहा होता था, तो किसी मैंने उसको एक दिन जो है वो एक सेइंग पढ़ा दी कि ये देखो कि कितनी अच्छी सेइंग है. दो तीन उसको पढ़ाएं तो ये उसके अपने जुमले हैं और ये राइटिंग में उसके अपने जुमले हैं, क्योंकि उसने बाद में मुझे ईमेल किया था कि ये जो सेइंग्स मुझे पढ़ा रहे हो उसको नहीं पता कि इमाम अली कौन है. उसने सुना भी नहीं है कि कौन अली और क्या इसका रिलेशन है. दीन ईमान से कुछ लेना देना नहीं है, सिर्फ क्रिश्चियन है जैसे आम दूसरे क्रिश्चियन होते हैं, लेकिन उसके अपने जुमले हैं कि ये जो सेइंग्स हैं इनको पढ़कर मेरी रूह ताज़ा हो जाती है. उसका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उसके ऊपर इतना असर हो जाता है पढ़कर. लेकिन हम इतना सालों से सुनते आ रहे हैं, हमारे पे कोई रिएक्शन नहीं है. अब यानी यहाँ पर आके ये सब बोलने का मकसद ये नहीं है कि मैं जो है हमारी कम्युनिटी को की बैशिंग कर रहा हूँ, यानी इस पर्पज़ ये नहीं है. पर्पज़ ये है कि अगर ये जो मौका खुदा ने मुझे दिया इसकी तवस्सुल से और इसकी बदौलत कोई मैसेज या कोई बात अगर हमारी समझ में आ जाती है और हमें इनक्रेज करती है कि हमें बेहतर करना चाहिए, कि हम इससे बेहतर कारकर्दगी होनी चाहिए, तो अल्लाह का लाख शुक्र. और आखिर में, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि नमाज खड़ा होना, वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुझे मोटिवेट किया? हमेशा से ख़ास तौर पर 2009 के बाद जब जॉर्ज गैलोवे का जो एट कॉन्वॉय गया था वीवा पैलेस्टीना के नाम से, उसके बाद से हमेशा से ये जो है वो जहन में एक बात थी कि जो है हमें भी कुछ करना चाहिए, एटलीस्ट पार्टिसिपेशन होनी चाहिए किसी ना किसी लेवल पर. सही है हम प्रोटेस्ट वगैरह करते हैं, दूसरी चीज़ें करते हैं, पार्टिसिपेशन है हमारी, लेकिन उस लेवल पर नहीं है जिस लेवल पर होनी चाहिए. तो हमेशा से जहन में ये बात थी. इस जज्बे, ये जज्बा नेक्स्ट लेवल पर उस वक्त गया था जब लास्ट ईयर मुहर्रम में जो मुहर्रम बीता है उसमें घर की एक मजलिस में आगा हसन की एक मजलिस थी, जिसके अंदर उन्होंने एक पॉइंट कहा था और वो ये था कि हमारी अपनी ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे इनकलाब आए. यानी जो लोग 45 या 50 या 55 ईयर्स के, यानी इनकलाब इस्लामी हम उनकी अपनी ज़िंदगी में आया, या जिस अगर मैं खुद अपने आप को देखूँ तो बहुत ही यानी इनकलाब इस्लामी मेरे लिए भी बहुत नया नया है, वो ऐसा नहीं कि बहुत सालों पहले आया था. या अभी जो मिडल ईस्ट में जो इनकलाब आ रहे हैं, और जो आगा हसन ने पॉइंट कहा था वो ये था कि हमने हर इनकलाब को घर पर बैठकर टीवी से देखा है, हमारी उसके अंदर किसी भी लेवल पर कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं रही है. तो क्या इमाम ज़माना का भी जो इनकलाब आएगा क्या वो भी हम घर बैठकर टीवी से देखेंगे, या हमारी उसके अंदर कोई पार्टिसिपेशन होगी? ये वो एक पॉइंट था जो और उसकी इमाम जमाने के इंकलाब के लिए कुछ ना कुछ अभी से हमें तैयारी करनी होगी. अब इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो है वो फ्लोटिला पे बैठ के जो है वहाँ चले जाएं, इसका ये भी मतलब नहीं. हर किसी की अपने लेवल पर एक ज़िम्मेदारी है और उसको उस ज़िम्मेदारी को पूरा करना है. अगर मैं फ्लोटिला पे गया तो इसका मतलब नहीं कि सारे वहाँ चले जाएं, किसी को यहाँ रहकर भी काम करना है. तो जो पॉइंट उन्होंने उस स्पीच से निकाला था कि हर बंदा अपने लेवल पर अपनी ज़िम्मेदारी को समझने की कोशिश करे कि वो कम्युनिटी में या माशरे में किस लेवल पर खड़ा है, उस लेवल पर उसकी किन लोगों के हवाले से ज़िम्मेदारी है. तो अगर सिर्फ किसी और अपनी सिर्फ बात करूँ तो मैं एक बेटा हूँ, मेरे माँ बाप की तरफ एक ज़िम्मेदारी है. मैं एक भाई हूँ, मेरी बहन की तरफ एक ज़िम्मेदारी है. कम्युनिटी में मेरी एक खुदा ने एक पोजीशन दी है, उस पोजीशन के हवाले से कम्युनिटी के लोगों के हद तक कम्युनिटी के लोगों के लिए मेरी एक ज़िम्मेदारी है. और उस इतना बड़ा इन्होंने उसी स्पीच में इस सर्कल को उन्होंने इतना बड़ा किया था कि एक एक इंसान जो रोड पर यहाँ घूम रहा है जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ उसकी मेरे ऊपर उसकी एक ज़िम्मेदारी है. अगर मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ तो मेरी उसके ऊपर एक ज़िम्मेदारी है जो मेरे आगे गाड़ी चला रहा है. ज़िम्मेदारी के लेवल और उसकी इंटेंसिटी और उसके अंदर डेफिनेटली फ़र्क आएगा रिलेशनशिप की वजह से, लेकिन हर इंसान के ऊपर मेरी एक ज़िम्मेदारी है. ज़रा सा अगर उस सर्कल को और बड़ा करें तो दूसरे जो मुसलमान हैं दुनिया में उनके ऊपर हमारी और भी ज़्यादा ज़िम्मेदारी है. वो एक ये एक बहुत सारी चीज़ों के अंदर एक पॉइंट ये था जिससे ये जज्बा अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो फिर प्रैक्टिकली जो है वो कुछ करने का मौका मिला. और बहुत ही मुझे अभी तक समझ नहीं आता कि किस तरीके से हो गया, क्योंकि बहुत दफ़ा जो है मुझे वहाँ से मना की नो के ईमेल आ गए थे कि जो हम नहीं ले जा सकते. और सबसे आखिर में पहुँचने वाले डेलीगेट्स के अंदर मैं था, सबसे आखिर में मैं पहुँचा था. तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो मौका दिया. लेकिन आखिर में नमाज़ का टाइम हो गया, आखिर में बस जो है वो मज़लूमीन फ़लस्तीन और मज़लूमीन बहरीन के मज़लूमीन के लिए कि कामयाबी के लिए एक सूरह फातिहा मा सलावात.